بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 3 ہے. آج ہم آپ کے لیے عمران سیریز کا ناول راز کی موت ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف ظہیر احمد ہیں. یہ ناول آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-21-21-38-225-03-00-29-19-600 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. اب میرے پاس اس کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہیں کہ میں X2 اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ہلاک کر کے انکل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں. یہ ریٹا ہی تھی جس پر محب وطنی کا بھوت سوار تھا, اور X2 اور حکومت کو X2 کی فائل اور بلیک کرسٹل کی بنا پر بلیک میل کر کے انکل پر لگائے گئے تمام الزامات سے بری کرانا چاہتی تھی. مجھے اب کچھ اور ہی کرنا پڑے گا, ورنہ نہ میں انکل کو بچا سکوں گی اور نہ اس دولت کو جو میں نے ریٹا کے ساتھ مل کر لیڈی گھوس کے روپ میں حاصل کی ہے. ہمارا ارادہ تھا کہ ہم چوریاں کر کے بہت سی دولت اکٹھا کرتے اور پھر حکومت اور X2 پر دباؤ ڈال کر انکل کو جیل سے باعزت رہا کراتے, پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکیشیا سے نکل جاتے. لیکن اب مجھے یہ سب ہوتا ناممکن دکھائی دے رہا ہے, اس لیے مجھے ریٹا کی سوچ سے ہٹ کر کام کرنا پڑے گا. تب بھی میں یہاں سے زیادہ دولت سمیٹ سکتی ہوں اور انکل کو بحفاظت یہاں سے نکال کر لے جا سکتی ہوں, سیتا نے مسلسل بڑبڑاتے ہوئے کہا. وہ کافی دیر سے سوچ رہی تھی اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں آ رہی ہوں X2, آج تمہارے راز کے ساتھ تمہاری زندگی کا بھی آخری دن ہے. میں تمہیں پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دوں گی اور پھر میں تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے ریٹا کی ہلاکت کا بھیانک انتقام لوں گی. ایسا انتقام کے مرنے کے بعد بھی تمہاری روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی, سیتا نے کہا, اور اس نے میز پر پڑا ہوا اسپیشل گیجٹ اٹھایا اور اسے کلائی پر باندھنے لگی. پھر اچانک اسے خیال آیا تو وہ رک گئی. اوہ, اگر روبانہ خان اور اس کے ساتھی غیبی حالت میں ہونے کے باوجود لیڈی گھوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھی یقیناً اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ لیڈی گھوسٹ کو سرخ رنگ کے گلاسز والے چشموں سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن انکل نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ گیجٹ سے غائب ہونے کے باوجود ہمیں سرخ رنگ کے چشموں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ آخر انکل نے ہم سے یہ راز کیوں چھپایا تھا؟ سیتا نے پریشانی کے عالم میں کہا. وہ تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھی اور پھر اس نے الماری کو کھول کر اس کے مختلف خانے کھولنے شروع کر دیے. ایک خانے سے اسے ایک پرانی ڈائری مل گئی. ڈائری دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی. ہاں, یہی ہے انکل کی ڈائری. اس ڈائری میں انہوں نے اسپیشل گیجٹ کے تمام خواص لکھے تھے. ڈائری صرف ریٹا نے پڑھی تھی, شاید وہ یہ پڑھنا بھول گئی ہو کہ سرخ رنگ ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انکل نے اس کا بھی کوئی حل لکھا ہوا ہو, سیتا نے کہا, اور پھر وہ ڈائری لے کر واپس آئی اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی اور ڈائری کھول کر اس کا مطالعہ کرنے لگی. ایک گھنٹے تک وہ مسلسل ڈائری کا مطالعہ کرتی رہی, پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈائری بند کر کے سائیڈ میں رکھ دی. انکل نے واضح طور پر لکھا ہے کہ کسی بھی سرخ رنگ کے گلاس سے ہمیں غیبی حالت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. انکل نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہماری موجودگی محسوس کر کے ہم پر سرخ رنگ پھینک دیا جائے تب بھی ہم کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکیں گی, سیتا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. سرخ شیشوں اور سرخ رنگ سے بچنے کا انکل نے کوئی طریقہ نہیں لکھا ہے. اب میں کیا کروں؟ سرخ رنگ تو واقعی میرے لیے عذاب بن گیا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ اسپیشل برانچ والوں کو اس بات کا علم ہو کہ سرخ رنگ کے چشمے سے ہمیں دیکھا جا سکتا ہے اور اس بات کا پاکیشیا سیکرٹ سروس یا علی عمران کو نہ ہو, سیتا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا. پھر اچانک وہ زور سے چونکی. اس نے جھپٹ کر پروفیسر کاشف جلیل کی ڈائری اٹھائی اور اسے کھول کر تیزی سے اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے. چند لمحے وہ صفحات پلٹتی رہی, پھر اس کی نظریں ایک چھوٹی سی عبارت پر جم گئی جو پروفیسر کاشف جلیل کی ہی لکھی ہوئی تھی. گڈ شو, तो ये है तरीका सुर्ख रंग से बचने के लिए। अंकल ने लिखा है कि जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, अगर इसी तरह सुर्ख रंग का लिबास पहन लिया जाए और अपने सारे जिस्म पर सुर्ख रंग लगा लिया जाए, तो फिर रंग गायब होने की सूरत में सुर्ख रोशनी और सुर्ख रंग के किसी ग्लास से भी गायब होने वाली शख्सियत को नहीं देखा जा सकता, जब तक उसके जिस्म से सुर्ख रंग साफ ना कर दिया जाए। सीता ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। वो हैरत से ये भी सोच रही थी कि डायरी में ये सब कुछ लिखा हुआ था, तो फिर इसके बारे में रीटा ने उसे पहले क्यों नहीं बताया, और इन सब बातों से बचने के लिए उसने एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं की। उसका एक्सट्रू की कैद में होना इस बात की दलील थी कि उसे भी सुर्ख रंग के ग्लासेस से ही देखा गया होगा, वरना गैबी हालत में उसका पकड़ा जाना नामुमकिन था। अब मैं देखती हूँ कि एक्सट्रू और उसके साथी किस तरह मुझे सुर्ख रंग में देख सकते हैं। मैं अंकल की बताई हुई तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करूंगी और फिर एक्सट्रू और उसके साथियों से रीटा की हलाकत का इंतकाम लेने जाऊंगी, और इस बार इनमें से कोई मेरे हाथों नहीं बच सकेगा। इन सब की मौत अब तय है, हर सूरत में और हर हाल में, सीता ने गुर्राते हुए कहा, और डायरी मेज पर रख कर वो एक झटके से उठी और तेज तेज चलती हुई मुल्हिका रूम की तरफ बढ़ती चली गई। इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। हुई मेम्बरान से बात, इमरान ने आगे बढ़कर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं, मैं उनसे मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनमें से किसी एक से भी मेरी बात नहीं हुई है, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। कहाँ गायब हो गए हैं सबके सब, इमरान ने कहा। मैंने कर्नल सुजात से बात की है, वो इन्हें तलाश कर रहा है, उम्मीद है जल्द ही इनका पता चल जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। आप बताएं, इस गैजेट से कुछ पता चला है जिसे आप लेबोरेटरी में चेक करने के लिए ले गए थे, ब्लैक जीरो ने पूछा। नहीं, गैजेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, इसकी बैटरी भी जल चुकी है। गैजेट के निचले हिस्से से एक वायर निकला हुआ था जो बैटरी से मुंसलिक था। जो लेडी घोस्ट को होश में आया, जब लेडी घोस्ट को होश आया और उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई, तो वायरस की कलाई को छू गया था। ताकतवर बैटरी से लेडी घोस्ट को जबरदस्त करंट लगा और वो फौरन हलाक हो गई। करंट लगने के बायस ही इसका जिस्म भी स्याही माइल हो गया था, इमरान ने जवाब दिया। इससे पहले कि इनमें मजीद कोई बात होती, उसी लम्हे इमरान की जेब में मौजूद उसके सेल फोन की घंटी बज उठी, तो इमरान ने चौंक कर जेब से सेल फोन निकाल लिया। उसने स्क्रीन देखी तो स्क्रीन पर टाइगर का नंबर फ्लैश हो रहा था। यस, इमरान ने सेल फोन का बटन प्रेस करके कान से लगाते हुए कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से टाइगर की मौतबाना आवाज सुनाई दी। हाँ टाइगर, बोलो, कैसे फोन किया है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने ब्लैक जीरो के साथ मिलकर इसराइल मिशन पर टाइगर को साथ ले जाने का प्रोग्राम जरूर बनाया था, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में उसने टाइगर से कोई रब्ता नहीं किया था। बॉस, फोर स्टार्स के तीन मेंबर्स जिनमें चौहान, खावर और नोमानी शामिल हैं, उनके बारे में आपको कुछ बताना है, दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। फोर स्टार्स क्या मतलब, क्या बताना है उनके बारे में तुम्हें, इमरान ने चौंक कर कहा। इन तीनों को गोलियां मारी गई हैं बॉस, और इनकी हालत बेहद खराब है, टाइगर ने जवाब दिया। तो इन तीनों को गोलियां लगने का सुनकर इमरान बुरी तरह से चौंक पड़ा। ओह, कैसे हुआ ये सब, किसने मारी उन्हें गोलियां, इमरान ने तेज लहजे में कहा। तो गोलियों का सुनकर ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा। मैं अपने एक दोस्त से मिलने उसके फ्लैट में गया था जो वाइटल कमर्शियल प्लाजा के टॉप फ्लोर पर है। जब अपने दोस्त से मिलकर प्लाजा से निकल कर बाहर आ रहा था, तो मैंने बेसमेंट की पार्किंग में इन तीनों को तेजी से भागकर जाते देखा था। उनके आगे चंद और अफराद थे जिन्होंने एक बेहोश औरत और तीन मर्दों को उठा रखा था। चौहान, फावर और नोमानी उनके पीछे भाग रहे थे। इससे पहले कि वो इन अफराद तक पहुंचते, जो चार बेहोश अफराद को कंधों पर डाले भाग रहे थे, एक तरफ से दो अफराद निकले और उन्होंने तीनों पर मशीन पिस्टल से फायरिंग कर दी। चूंकि इन पर अचानक और इंतहाई गैर मुतवक्के हमला किया गया था, इसीलिए फायरिंग की जद में आ गए और तीनों जख्मी होकर गिर गए। जख्मी करने वाले जिस तरफ से आए थे, उसी तरफ वापस भाग गए थे। मैं उनसे काफी दूर था। इन तीनों को जख्मी होकर गिरते देखकर मैं भागता हुआ उनके करीब आया, तो वो बुरी तरह से तड़प रहे थे। उन तीनों को कई गोलियां लगी हैं। वो मेकअप में थे, लेकिन मैंने उन्हें उनकी चाल ढाल और कदो कामत से पहचान लिया था। क्योंकि उनकी हालत खराब थी, इसीलिए मैंने उन पर फायरिंग करने वालों और उन अफराद जो चार अफराद को बेहोशी की हालत में उठाकर ले जा रहे थे के पीछे जाने के बजाय इन तीनों की मदद करने का फैसला किया। और फिर मैं वहाँ मौजूद कुछ अफराद की मदद से इन तीनों को उठाकर स्पेशल अस्पताल पहुँच गया। अब वो स्पेशल अस्पताल में हैं और डॉक्टर सिद्दीक इनके ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा, ओह अब उनकी हालत कैसी है, इमरान ने होश चबाते हुए कहा। उन्हें कई गोलियां लगी हैं बॉस, डॉक्टर सिद्दीकी भी उनकी हालत देखकर घबरा गए थे। तीनों को उन्होंने अपनी निगरानी में ऑपरेशन रूम में पहुंचाया है और अब वो खुद डॉक्टरों की टीम के साथ उनपे ऑपरेशन कर रहे हैं, टाइगर ने जवाब दिया। कौन लोग थे जिन्होंने इन तीनों पर गोलियां बरसाई थी, क्या तुम उन्हें जानते हो, इमरान ने पूछा। यस बॉस, मैंने उनमें से एक आदमी की शक्ल देखी थी, वो बाऊजी था जो एक बड़ा बदमाश है, वो आर्मी ग्रुप के लिए काम करता है, टाइगर ने जवाब दिया। आर्मी ग्रुप, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, आर्मी का ताल्लुक फास्ट क्लब से है, वो एक नामी बदमाश है और इसका एक बड़ा ग्रुप भी है जो बेहद फाल और खतरनाक है। आर्मी ग्रुप हर किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस रहता है, कत्लो गारत, अगवा और ऐसे बहुत से क्राइम में इनका हाथ होता है। आर्मी ये काम जाती तौर पर नहीं करता बल्कि इन कामों के लिए उसे बाकायदा हायर किया जाता है, टाइगर ने जवाब दिया। जिन अफराद को वो बेहोशी की हालत में अगवा करके ले जा रहे थे, क्या तुमने उन्हें देखा था, इमरान ने पूछा। नहीं बॉस, वो मुझसे काफी फासले पर थे, मैं उन्हें नहीं देख सका था, टाइगर ने जवाब दिया। क्या फोर स्टार्स के मेम्बरान उनसे अगवा होने वाले अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इमरान ने पूछा। यस बॉस, तो जिस तरह अगवा कुनिंदगान के पीछे भाग रहे थे उससे तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे वो इन अफराद से इन चारों बेहोश अफराद को बचाना चाहते हो, टाइगर ने कहा। तुमने बताया है कि इन चार अफराद में से तीन मर्द और एक औरत थी, तुम्हारे ख्याल में क्या वो चारों सीक्रेट सर्विस के मेंबर हो सकते हैं, इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। मैं कंफर्म नहीं हूँ बॉस, लेकिन शायद वो चारों सीक्रेट सर्विस के मेंबर ही हों, क्योंकि इन तीनों का अंदाज ऐसा ही था जैसे वो वाकई अगवा करने वाले से इन चारों को हर सूरत में बचाना चाहते हों, टाइगर ने जवाब दिया। तुम अब कहाँ हो, इमरान ने पूछा। मैं अभी स्पेशल अस्पताल में ही हूँ और ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा इन तीनों के ऑपरेशन खत्म होने का मुंतजर हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। फास्ट क्लब का एड्रेस क्या है, इमरान ने पूछा, तो टाइगर ने उसे फास्ट क्लब का एड्रेस बता दिया। ओके, तुम अस्पताल से निकलकर फास्ट क्लब पहुँचो, मैं वहीं तुमसे मिलता हूँ। जिन अफराद को अगवा किया गया है वो लाजमन सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान है, इससे पहले कि आर्मी ग्रुप उन्हें कोई नुकसान पहुँचाए हमें हर हाल में उन्हें बचाना है, इमरान ने कहा। यस बॉस, मैं 20 मिनट तक क्लब के बाहर पहुंच जाऊंगा, टाइगर ने कहा। तो इमरान ने उसे चंद मजीद हिदायत दी और फिर सेल फोन बंद कर दिया। क्या हुआ, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। सीक्रेट सर्विस के चार मेंबर अगवा हो गए हैं, तीन को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया है, इमरान ने जवाब दिया और फिर इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार उछल पड़ा। लेकिन मेम्बरान वाइटल प्लाजा क्या करने गए थे, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मालूम नहीं, टाइगर इस प्लाजा में अपने किसी दोस्त से मिलने गया था, उसने इत्तेफाक से नोमानी, चौहान और खावर को इन अफराद के पीछे भागते देखा था जो शायद जूलिया, सफदर, कैप्टन शकील और सिद्दीकी को बेहोशी की हालत में उठाए पार्किंग की तरफ जा रहे थे। अब वो सबके सब इसी प्लाजा में क्या करने गए थे, इनका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, इमरान ने कहा। इसीलिए इनमें से कोई हमारी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, ब्लैक जीरो ने कहा। शायद, इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। क्या अब आप टाइगर के साथ फास्ट क्लब जाएंगे, ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, न जाने क्यों मुझे ये ऐसा एहसास हो रहा है जैसे चौहान, खावर और नोमानी की तरह इन चारों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। मुझे जल्द से जल्द फास्ट क्लब जाकर उन्हें आर्मी ग्रुप से रिहाई दिलानी होगी, वरना वो उन्हें भी गोलियां मार देंगे, इमरान ने कहा। पहले ही हम अजीब और गरीब हालात का शिकार हैं और अब ये नया सिलसिला शुरू हो गया है, ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। गर्दिश अय्याम का दौर शुरू हो गया है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने फौरन आमीन कह दिया। अगर आप इन मामलात में उलझ गए तो फिर इसराइल का क्या करेंगे, वहाँ जाना भी तो इंतहाई जरूरी है, ब्लैक जीरो ने कहा। इसके लिए मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा, इमरान ने कहा। वो क्या, ब्लैक जीरो ने कहा। एक मिनट, इमरान ने कहा और फिर उसने सामने पड़ा हुआ फोन अपनी तरफ खिसकाया और उसका रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने लगा। नंबर प्रेस करते ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। जोसेफ बोल रहा हूँ। रब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से जोसेफ की मखसूस आवाज सुनाई दी तो ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, ओह बॉस आप काफी दिनों बाद फोन किया है, कहाँ थे आप? इमरान की आवाज सुनकर जोसेफ ने चहकते हुए अंदाज में कहा, मसरूफ थे। ये बताओ कि जोआना कहाँ है? इमरान ने कहा, वो अपने कमरे में है, जोसेफ ने जवाब दिया। ओके तुम दोनों तैयार हो जाओ, तुम दोनों ने कब्रिस जाना है, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने बगैर किसी तरद्दुद के कहा। कब्रिस से तुम दोनों को इसराइल पहुंचना है और वहां एक अहम मिशन सर अंजाम देना है। इस मिशन की तफसीलात तुम्हें ताहिर समझा देगा, तुम इससे बात कर लो और फिर जाने की तैयारी शुरू कर दो। तुम्हें कब और कैसे जाना है ये सब भी तुम्हें ताहिर बता देगा, इमरान ने कहा। यस बॉस, इस मिशन में हम दोनों ही जाएंगे या हमारे साथ कोई और भी होगा, जोसेफ ने इसी अंदाज में कहा। फिलहाल तुम दोनों ने ही जाना है, हो सकता है कि बाद में टाइगर और मैं भी वहां पहुंच जाएं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ये मिशन तुम दोनों को ही पूरा करना है, समझे तुम, इमरान ने कहा। यस बॉस, समझ गया, जोसेफ ने मौदबाना लहजे में कहा। अब तुम ताहिर से बात करो, इमरान ने कहा और कान से रिसीवर हटाकर ब्लैक जीरो की तरफ बढ़ा दिया। इसे मिशन की तफसील बता दो और इन दोनों के जाने का बंदोबस्त करो, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाते हुए इसे रिसीवर पकड़ा और फिर वो जोसेफ को मिशन की ब्रीफिंग देने लगा। क्या आपको यकीन है कि जोसेफ और जोआना इसराइल में मिशन मुकम्मल कर सकते हैं? जोसेफ से बात करने के बाद ब्लैक जीरो ने रिसीवर क्रेडिट पर रखते हुए इमरान से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, दोनों इंतहाई जीरक हैं और हर काम का तजुर्बा रखते हैं। दोनों ताकत और जहानत को यकजा कर लेंगे तो इनके लिए सुपर एजेंसी से मुकाबला करना मुश्किल नहीं होगा। मैं वापस आकर ईगल ग्रुप को भी एक्टिव कर दूंगा, वक्त पड़ने पर वो इन दोनों की मुआवनत करेंगे। ईगल ग्रुप की मदद से दोनों यकीनी तौर पर अपना मिशन आसानी से मुकम्मल कर लेंगे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने उसे चंद हिदायत दी और फिर वो तेज तेज चलता हुआ ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया। कुछ ही देर में वो अपनी कार पर दानिश मंजिल के लिए निकला चला जा रहा था। इमरान को अभी गए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक ऑपरेशन रूम में तेज सीटी की आवाज गूंज उठी। सीटी की आवाज सुनकर ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा और उसकी नजरें सामने मौजूद एक कंप्यूटराइज मशीन पर जम गईं। उस पर लगा हुआ सुर्ख रंग का एक बल्ब जलना बुझना शुरू हो गया। साथ ही इस मशीन पर लगी हुई एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो गई, जिसमें दानिश मंजिल का बैरूनी मंजर आ गया था। क्या मतलब? ये मशीन तो ह्यूमन कॉशन की है, क्या दानिश मंजिल में कोई गैर मुतालिक शख्स दाखिल हुआ है? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा और उठकर तेजी से उस मशीन की तरफ लपका। उसकी नजरें मशीन पर लगी हुई स्क्रीन पर जम गई थी, लेकिन उसे वहां कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। मशीन से बदस्तूर सीटी की आवाज निकल रही थी। हैरत है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो तेजी से मशीन ऑपरेट करने लगा। स्क्रीन पर दानिश मंजिल के मुख्तलिफ हिस्सों के मनाजिर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्लैक जीरो ने दानिश मंजिल का एक एक हिस्सा चेक कर लिया था, लेकिन वहाँ वाकई कोई आदमी नहीं था। मैंने दानिश मंजिल का एक एक हिस्सा चेक कर लिया है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये सीटी की आवाज बंद क्यों नहीं हो रही है? ब्लैक जीरो ने परेशानी के आलम में कहा। उसी लम्हे उसे अपने अकब में खटके की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक कर तेजी से पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। कौन है यहाँ? ब्लैक जीरो ने हैरत से चारों तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी मौत, एक फुनकारती हुई निस्वानी आवाज सुनाई दी और ब्लैक जीरो यूं उछल पड़ा जैसे उसके पैरों तले बम फट पड़ा हो। कर्नल स्कॉट अपने ऑफिस में बैठा रोजमर्रा के काम कर रहा था कि अचानक कमरे में तेज सीटी की आवाज गूंज उठी तो कर्नल स्कॉट बेख्तियार चौंक पड़ा। सीटी की आवाज उसकी मेज की दराज से आ रही थी। कर्नल स्कॉट ने फौरन मेज की दराज खोली और इसमें से एक जदीद साफ्ट का ट्रांसमीटर निकाल लिया। उसने ट्रांसमीटर का बटन प्रेस किया। हेलो हेलो, ए कॉलिंग, हेलो ओवर, ट्रांसमीटर ऑन होते ही एक तेज आवाज सुनाई दी, यस कर्नल स्कॉट अटेंडिंग यू, ओवर। कर्नल स्कॉट ने करफ लहजे में कहा, फॉस्कल बोल रहा हूँ चीफ पाकेशिया से, ओवर। दूसरी तरफ से एक मोतबाना आवाज सुनाई दी, यस फॉस्कल किस लिए कॉल की है, ओवर। कर्नल स्कॉट ने चौंक कर कहा, चीफ एक अहम इत्तला है, ओवर। फॉस्कल ने जवाब दिया, कैसी इत्तला, ओवर। कर्नल स्कॉट ने कहा, चीफ अली इमरान के दो सियाह फार्म साथी जिनमें से एक का नाम जोसेफ है और दूसरे का जवाना, ये दोनों पाकेशिया से कब्रस के लिए रवाना हुए हैं, ओवर। फॉस्कल ने कहा, सियाह फार्म साथी क्या मतलब, अगर वो दोनों कब्रस के लिए रवाना हुए हैं तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है जो तुमने मुझे इनके बारे में बताने के लिए कॉल की है, ओवर। कर्नल स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा, इनके पास स्पेशल पासपोर्ट्स हैं चीफ, इन पासपोर्ट्स की मदद से वो कब्रस और फिर कब्रस से तल अबीब जाना चाहते हैं, ओवर। फॉस्कल ने कहा, तो इस बार कर्नल स्कॉट पे अख्तियार चौंक पड़ा, तल अबीब तुम्हारा मतलब है वो दोनों इसराइल पहुंच रहे हैं, ओवर। कर्नल स्कॉट ने कहा, यस चीफ, ओवर। फॉस्कल ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो दोनों कब्रस के रास्ते इसराइल पहुंच रहे हैं, ओवर। कर्नल स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो दोनों जिस फ्लाइट में काम सफर कर रहे हैं मैं भी इसी फ्लाइट में था चीफ, मैं पाकिस्तान से एक जरूरी काम के सिलसिले में ताइपान जा रहा था, ताइपान के बाद फ्लाइट डायरेक्ट कब्रस के लिए रवाना होनी थी, वो दोनों जिस सीट पर बैठे हुए थे उनकी पिछली सीट पर मैं मौजूद था, दोनों आपस में कदीम अफ्रीकी कबाको जबान में बात कर रहे थे, मैं कबाको जबान जानता हूँ, पहले तो मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान न दिया, लेकिन जब उन्होंने इसराइल सुपर एजेंसी और आपका नाम लिया तो मैं चौंक पड़ा और फिर मैं उनकी बातें गौर से सुनने लगा, ओवर। फॉस्कल ने जवाब देते हुए कहा, क्या बातें कर रहे थे वो, ओवर। कर्नल स्कॉट ने कहा, वो दोनों कह रहे थे कि इस बार इमरान ने उन्हें अकेले ही इसराइल जाकर मिशन मुकम्मल करने का इख्तियार दिया है, उन्हें इसराइल पहुंचकर सुपर एजेंसी के खिलाफ काम करना है, इसराइल की सुपर एजेंसी का चीफ कर्नल स्कॉट है जिसके पास पाकेशिया का एक अहम राज है जो एक कदीम ब्लू डायमंड में है, उन्हें हर हाल में कर्नल स्कॉट तक पहुंचकर उससे ब्लू डायमंड हासिल करना है, चाहे उसके लिए उन्हें वहां लाशों के पुश्ते ही क्यों ना लगाना पड़े, ओवर। फॉस्कल ने कहा, तो कर्नल स्कॉट भी अख्तियार चौंक पड़ा, क्या कहा तुमने, वो दोनों यहाँ मेरे खिलाफ काम करने के लिए आ रहे हैं, ओवर। कर्नल स्कॉट ने तेज लहजे में कहा, यस चीफ, उन्होंने जो बातें की हैं उनसे मुझे ये सब मालूम हुआ है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ काम करने वाले अली इमरान ने इन दोनों को खुसूसी तौर पर कब्रस भेजा है ताकि वो कब्रस के रास्ते इसराइल पहुंच जाएं और फिर वो सुपर एजेंसी के खिलाफ काम कर सकें, ओवर। फॉस्कल ने कहा, क्या वो दोनों अकेले हैं या इमरान भी उनके साथ है, ओवर। कर्नल स्कॉट ने होंठ चबाते हुए कहा, नो चीफ, उनकी बातों से मालूम हुआ है कि वो दोनों ही मिशन पर जा रहे हैं, इमरान उनके हमराह नहीं है, ओवर। फॉस्कल ने कहा, उनके हुलिये क्या हैं, ओवर। कर्नल स्कॉट ने कहा, तो फॉस्कल ने उसे जोसेफ और जोआना के हुलिये बता दिए, दोनों सियाफाम और देवकामत हैं, वो तो कोई भी मेकअप करने छुप नहीं सकेंगे, ओवर। कर्नल स्कॉट ने इन दोनों के हुलिये सुनकर कहा, यस चीफ, उनकी कद काठ और उनकी रंगत ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, ओवर। फॉस्कल ने कहा, उनके दरमियान जो भी बातें हुई थी मुझे उन सब की तफसील बताओ, ओवर। कर्नल स्कॉट ने कहा, तो फॉस्कल जोसेफ और जोआना के दरमियान होने वाली बातों की उसे तफसील बताने लगा, इसकी तफसील का मतन वही था जो वो पहले ही कर्नल स्कॉट को बता चुका था, वो किस फ्लाइट से कब्रस पहुंच रहे हैं, ओवर। कर्नल स्कॉट ने पूछा, तो फॉस्कल ने उसे कब्रस जाने वाली पाकिस्तानी फ्लाइट की तफसीलात बता दी, ओके मैं कब्रस में मौजूद अपने एजेंटों को एक्टिव कर देता हूँ, वो इन पर नजर रखेंगे और अगर इन दोनों ने इसराइल दाखिल होने की कोशिश की तो ये इन दोनों की आखिरी कोशिश होगी, ओवर। कर्नल स्कॉट ने कहा, यस चीफ, ओवर। फॉस्कल ने कहा और कर्नल स्कॉट ने ओवर एंड ऑल कहकर रब्ता खत्म कर दिया। हैरत है, मेरे खिलाफ खुद काम करने के बजाय इमरान ने दो हफ्तों को क्यों भेजा है, क्या वो ये समझता है कि दोनों देवकामत सियाफाम मुझे और मेरी एजेंसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर इसे इस बात का गुमान है कि वो दोनों अपनी ताकत से मुझे और मेरी एजेंसी को कुचल सकते हैं और आसानी से अपना मिशन मुकम्मल कर लेंगे। कर्नल स्कॉट ने ट्रांसमीटर ऑफ करके मेज पर रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्से के भी तासुरात नुमाया थे। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने ट्रांसमीटर उठाकर उसे ऑन किया और इस पर कब्रसी एजेंट की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते ही इसने मुसलसल कॉल देनी शुरू कर दी। यह खुसूसी साख का ट्रांसमीटर था जिसकी कॉल ना तो कहीं कैच की जा सकती थी और ना सुनी जा सकती थी। हेलो हेलो, चीफ कॉलिंग फ्रॉम सुपर एजेंसी हेडक्वार्टर, हेलो हेलो, ओवर, उसने कॉल देते हुए कहा। यस, एकॉय अटेंडिंग यू, ओवर। रब्ता मिलते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। चीफ बोल रहा हूँ, एकॉय, ओवर। कर्नल स्कॉट ने इसी तरह कड़क लहजे में कहा। यस चीफ, ओवर, एकॉय ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। सुनो, पाकिस्तान से कब्रस के लिए एक फ्लाइट रवाना हुई है जो एक घंटे तक कब्रस एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगी। इस फ्लाइट में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ काम करने वाले एजेंट अली इमरान के दो सियाफाम साथी जिनके नाम जोसेफ और जुआना है सफर कर रहे हैं। दोनों कब्रस के रास्ते इसराइल दाखिल होने की कोशिश करेंगे। तुम्हें इन दोनों पर नजर रखनी है और अगर ये इसराइल दाखिल होने की कोशिश करें तो फिर तुम्हें इन दोनों के खिलाफ तेजी से और इंतहाई भरपूर अंदाज में कार्रवाई करनी है और इन्हें हर हाल में इसराइल में दाखिल होने से रोकना है। ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, वो दोनों कब्रस के किस इलाके में पहुंच रहे हैं? ओवर, अकाय ने पूछा। कब्रस के दारुल हुकूमत निकोसिया। तुम्हें इन पर एयरपोर्ट से ही नजर रखनी होगी, ऐसा ना हो कि वो निकोसिया पहुंचते ही गायब हो जाएं और तुम उन्हें तलाश करते रह जाओ। ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। आप फिक्र ना करें चीफ, मैं निकोसिया में ही मौजूद हूँ और एयरपोर्ट से भी नजदीक हूँ। मैं अभी एयरपोर्ट रवाना हो जाता हूँ और इनका इंतजार करता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन पर एयरपोर्ट से बाहर आते ही अटैक कर सकता हूँ। ओवर, अकाय ने कहा। अगर ऐसा मुमकिन है तो यही करो। अगर अपने पीछे ऐसा कोई निशान ना छोड़ना जिससे पता चल सके कि इन दोनों की हलाकत के पीछे इसराइली एजेंटों का हाथ है। ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। आप बेफिक्र रहे चीफ, मैं हाथ पैर बचाकर काम करूंगा और किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि उन्हें किसने हलाक किया है। ओवर, एकॉय ने कहा। गुड शो, इन दोनों की हलाकत की खबर मुझे फौरन देना। ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, ओवर, एकॉय ने कहा। इन दोनों के हुलिये नोट कर लो, कर्नल स्कॉट ने कहा और फिर वो उसे जोसेफ और जुआना के हुलिये बताने लगा। यस चीफ, मैं अब उन्हें आसानी से पहचान लूंगा और जैसे ही एयरपोर्ट से निकलेंगे मैं उन्हें दूर मार राइफल से दूर ही से शूट कर दूंगा। ओवर, एकॉय ने कहा। ये काम एयरपोर्ट से दूर रहकर करना ताकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से और खास तौर पर वहां पर लगे हुए सिक्योरिटी कैमरों से बच सको। ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, मैं एहतियात करूंगा। ओवर, एकॉय ने कहा और कर्नल स्कॉट ने ओवर एंड ऑल कहकर रब्ता खत्म कर दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। उसे एकॉय की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद था। एकॉय न सिर्फ अपने काम में माहिर था बल्कि वो तेज और खतरनाक आदमी है जो अपने काम इंतहाई खुश असलूबी और बर्फ रफ्तारी से सर अंजाम देने में माहिर है। उसे यकीन था कि जोसेफ और जुआना उसे किसी तौर पर नहीं बच सकेंगे और एकॉय उन्हें कब्रस में ही हलाक करने में कामयाब हो जाएगा। इमरान टाइगर के बताए हुए मखसूस पते पर पहुंचा तो टाइगर सड़क पर कार से बाहर खड़ा उसका मुंतजर था। उसने हल्का फुल्का सा मेकअप कर रखा था। इमरान ने कार ले जाकर उसकी कार के पास रोक दी। कार रोकते ही वो बाहर निकल आया। टाइगर ने उसे बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। क्या तुम्हें यकीन है कि मेम्बरान को गोलियां मारने और अगवा कराने में आर्मी का ही हाथ है? इमरान ने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा। यस बॉस, जिन दो अफराद ने 4 स्टार्स पर फायरिंग की थी इन दोनों को मैं बखूबी पहचानता हूँ। इनमें से एक का नाम जैकी है और दूसरे का नाम विकी है। दोनों भाई हैं और दोनों आर्मी के लिए ही काम करते हैं। दोनों टॉप शूटर्स हैं। मेम्बरान पर फायरिंग करते ही वो भाग निकले थे लेकिन मैंने उन्हें पहचान लिया था। अगर मुझे मेम्बरान को अस्पताल पहुँचाने की जल्दी ना होती तो मैं उन्हें पकड़ लेता, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। यस बॉस, क्या ये दोनों आर्मी के साथ ही होते हैं? इमरान ने पूछा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। आर्मी कहाँ होगा इस वक्त? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उसका ज्यादा वक्त क्लब में ही गुजरता है बॉस, अगर वो क्लब में ना मिला तो फिर वो अपनी रिहाइशगाह में जरूर मिल जाएगा, टाइगर ने कहा। रिहाइशगाह का पता जानते हो? इमरान ने पूछा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तो चलो पहले क्लब चलते हैं, अगर आर्मी वहाँ मिल गया तो ठीक, वरना हम सीधे उसकी रिहाइशगाह जाएंगे और उसकी गर्दन दबोच कर उससे उगलवा लेंगे कि उसके आदमियों ने सीक्रेट सर्विस के मेंबरान पर हमला क्यों और किसकी ईमा पर किया था, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। अपनी कार यहीं छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ, इमरान ने कहा, उसकी कार की तरफ देखते हुए कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और अपनी कार लॉक करके इमरान की कार के साइड सीट पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। आपको एक और बात बतानी है बॉस, टाइगर ने कहा। क्या? इमरान ने पूछा। आर्मी ग्रुप के अफराद जो चार अफराद को बेहोशी की हालत में उठा कर ले जा रहे थे, मैंने उनके बारे में अपने एक आदमी से मालूमात हासिल की हैं, जिसे मैंने खसूसी तौर पर वाइटल प्लाजा भेजा था। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों को वाइटल प्लाजा के टॉप फ्लोर में मौजूद 840 नंबर के फ्लैट से बेहोशी की हालत में उठाया गया था, टाइगर ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि वो चारों इस फ्लैट में पहले से मौजूद थे, इमरान ने चौंक कर कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। किसका फ्लैट है? इमरान ने पूछा। वहाँ दो लड़कियाँ रहती थी, जिनमें से एक का नाम मारिया वास्ती है और दूसरी सारिया वास्ती। दोनों के बारे में अजीब और गरीब खबरें मिली हैं, टाइगर ने कहा। अजीब और गरीब खबरें? क्या है वो अजीब और गरीब खबरें? इमरान ने हैरत से पूछा। मेरे आदमी ने इर्द गिर्द के फ्लैटों से इन लड़कियों के बारे में मालूमात हासिल की हैं। वो लड़कियाँ पिछले दो हफ्तों से इस फ्लैट में मुकीम हैं और दोनों का ज्यादा वक्त फ्लैट में ही गुजरता है। वो बहुत कम बाहर आती हैं। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि वो ट्विन सिस्टर्स हैं। दोनों की शक्लें और कद काठ एक जैसा ही है। कभी एक लड़की बाहर आती है और कभी दूसरी, लेकिन किसी को आज तक ये पता नहीं चल सका कि बाहर जाने वाली लड़की मारिया वास्ती होती थी या सारिया वास्ती। वो किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी और ना ही किसी को घास डालती थी। उनके बाहर आने जाने का कोई वक्त नहीं होता था। वो दिन को भी निकलती थी और रात को भी। उन्हें एक दो बार ही एक साथ बाहर निकलते देखा गया है। एक आदमी ने बताया है कि उसने उनमें से एक लड़की के लिबास पर लगा हुआ एक बैज देखा था, जिस पर उसका नाम मारिया वास्ती की जगह रीता लिखा हुआ था और वो बैज पाकिस्तान डेली न्यूज का था। बैज पर न्यूज रिपोर्टर भी लिखा हुआ था, टाइगर ने कहा। तो इमरान के चेहरे पर तहय्युर के तासुरात नुमाया हो गए। रीटा का असल नाम मारिया है और उसकी एक जुड़वा बहन भी है। ये तुम क्या कह रहे हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे जो मालूमात मिली है मैं वो सब आपको बता रहा हूँ। और बॉस, वो फ्लैट किसी काशिफ जलील नामी आदमी की प्रॉपर्टी है जो किसी क्राइम में मुलव्वस था और अब किसी जेल में है, टाइगर ने कहा। तो इमरान ने अचानक कार को ब्रेक लगा दिए। कार एक झटके से रुक गई और इमरान हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर टाइगर की तरफ देखने लगा, जैसे टाइगर ने उसे कोई इंतहाई हैरानकुन और नाकाबले यकीन बात बता दी हो। क्या तुम्हें यकीन है कि इस फ्लैट में दो हमशक्ल लड़कियां रहती थी? इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने कहा। उसके चेहरे पर भी हैरत लहराने लगी कि इमरान ये दो नाम सुनकर चौंका क्यों है और उसने इस तरह कार क्यों रोकी थी। जब इमरान को बेहोशी की हालत में आर्मी के अफराद उठाकर ले जा रहे थे तब कौन था इस फ्लैट में? इमरान ने पूछा। फ्लैट में इन चार बेहोश अफराद के सिवा कोई नहीं था बॉस, और मेरे आदमी के मुताबिक फ्लैट खाली था। वहाँ सामान नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बहनों ने फ्लैट खाली कर दिया हो और अपना सामान लेकर कहीं और शिफ्ट हो गई हो, टाइगर ने कहा। तो यहाँ एक नहीं दो लेडी घोस्ट मौजूद हैं, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। लेडी घोस्ट? क्या मतलब? टाइगर ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। क्यों, क्या तुम लेडी घोस्ट को नहीं जानते जिसने पाकिस्तान में उधम मचा रखा है? इमरान ने कहा। इसके बारे में सुना है, लेकिन आप इसे इन लड़कियों से क्यों मंसूब कर रहे हैं? टाइगर ने कहा। तो इमरान ने उसे रीटा के बारे में सारी तफसीलात बता दी। अगर अगवा होने वाले अफराद सीक्रेट सर्विस के अरकान ही हैं, तो फिर उन्हें यकीनन लेडी घोस्ट का कोई क्लू मिला होगा, इसीलिए इन सब ने एक साथ इस फ्लैट पर धावा बोलने की कोशिश की होगी। हो सकता है लेडी घोस्ट ने उन्हें किसी साइंसी आले की मदद से बेहोश कर दिया हो फिर उन्हें फ्लैट में इसी तरह बेहोश छोड़कर निकल गई हो। एक बात तो क्लियर है कि एक लेडी घोस्ट शिमाली पहाड़ियों में थी जिसे मैंने काबू किया था और वो अपने ही गैजेट की पावर बैटरी का शॉक लगने से हलाक हो गई है। अगर यहाँ इसकी जुड़वा बहन मौजूद थी तो फिर मेम्बरान को बेहोश करने में उसका ही हाथ हो सकता है, और वो गायब है तो फिर मुझे उसका यकीन है कि इन दोनों के पास दो गैजेट थे। एक रीटा के साथ खत्म हो गया जबकि दूसरा गैजेट उसकी जुड़वा बहन के पास है, और पाकेशिया में जो कुछ हो रहा था वो सब ये दोनों बहनें ही लेडी घोस्ट के रूप में कर रही थी। एक लेडी घोस्ट खत्म हो गई लेकिन दूसरी अभी जिंदा है, जिसका मतलब वाजह है कि लेडी घोस्ट का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मुमकिन है कि दूसरी लेडी घोस्ट ने ही आर्मी और उसके ग्रुप को हायर किया हो और इसकी मदद से फ्लैट से बेहोश मेम्बरान को उठवाया हो। चौहान, खावर और नौमानी जो इस प्लाजा के बाहर मौजूद थे, उन्होंने जब बदमाशों को अपने साथियों को बेहोशी की हालत में उठाकर ले जाते हुए देखा तो वो इनके पीछे भाग पड़े होंगे और इन बदमाशों की गोलियों का शिकार बन गए होंगे, इमरान ने हालात का तजिया करते हुए कहा। यस बॉस, आपने जो कुछ बताया है उसके पेश नजर तो यही सूरत हाल बनती है, टाइगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। सोचने की बात यह है कि अगर दूसरी लेडी घोस्ट है तो वो अब कहाँ है, इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। अगर उसने मेम्बरान को उठवाने के लिए आर्मी को हायर किया है तो हो सकता है कि वो इसके ठिकाने के बारे में भी जानता हो, टाइगर ने कहा। नहीं, लेडी घोस्ट इंतहाई जहीन और चालाक है, वो आम गुंडों और बदमाशों को अपने ठिकाने का पता कैसे बता सकती है। अलबत्ता एक बात मेरे जहन में आ रही है, इमरान ने कहा। वो क्या बॉस, टाइगर ने पूछा। लेडी घोस्ट अगर अपने अंकल प्रोफेसर काशिफ जलील के फ्लैट में रह रही थी तो फिर ये ऐन मुमकिन है कि वो प्रोफेसर काशिफ जलील की रिहाइशगाह या उसकी किसी और रिहाइशगाह में मुंतकिल हो गई हो। हम आर्मी से मिल लें तो फिर तुम्हारा सबसे पहला काम ये मालूम करना है कि प्रोफेसर काशिफ जलील की प्रॉपर्टी कितनी है और कहाँ कहाँ है। मुझे यकीन है कि अगर इस बात का पता चल जाए तो दूसरी लेडी घोस्ट तक भी हम आसानी से पहुँच जाएंगे, इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने इस बात में सर हिलाकर कहा और फिर वो दोनों खामोश हो गए। इमरान गहरी सोच में डूब गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो एक वसी और इस इमारत के अहाते में दाखिल हो रहे थे जिसके गेट पर फास्ट क्लब का बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ था। इमरान कार साइड में मौजूद पार्किंग की तरफ ले गया। इमरान ने जैसे ही कार पार्किंग में रोकी, एक लड़का तेजी से दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसने टाइगर को देखकर मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और एक कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। वो शायद इसे पहचानता था। शौकी, क्या आर्मी क्लब में है, टाइगर ने आहिस्ता से उतरकर उस लड़के से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, वो क्लब में अपने दफ्तर में ही मौजूद है, लड़के ने जवाब दिया जिसका नाम शौकी था। विकी और जैकी कहाँ है, क्या वो भी क्लब में है, टाइगर ने पूछा। नहीं, दोनों चंद घंटे पहले तक तो यहीं थे लेकिन फिर वो चले गए और अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, शौकी ने जवाब दिया। क्या तुम बता सकते हो कि वो दोनों कहाँ गए हैं, शौकी ने जवाब दिया। क्या तुम बता सकते हो। नहीं नहीं साहब, मैं तो इनसे बात करते हुए भी डरता हूँ, वो भला मुझे क्यों बताएंगे, शौकी ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम अपना काम करो, टाइगर ने एक नोट निकालकर उसकी ऊपर वाली जेब में डालते हुए कहा। तो शौकी के चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात नुमाया हो गए। इमरान और टाइगर पार्किंग से निकलकर क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। मेन गेट से गुजरकर वो हॉल में दाखिल हुए। हॉल वसी था और हर तरफ मेजें लगी हुई थी जिन पर मुख्तलिफ कबील के अफराद बैठे शराब नोशी और जुआ खेलने में मसरूफ थे। वहाँ मनशियात की भी तेज और नागवार बू फैली हुई थी। हॉल में दाखिल होते ही इमरान और टाइगर का मुंह बन गया लेकिन वो रुके बगैर तेज तेज चलते हुए सामने मौजूद काउंटर की तरफ बढ़ गए जहाँ दो काउंटर मैन मौजूद थे। वो वेटर्स को शराब और दूसरी चीजें सर्व कर रहे थे। उनके साथ एक काउंटर गर्ल भी बैठी हुई थी जिसपे कैश काउंटर संभाला हुआ था। हॉल के मुख्तलिफ कोनों में चंद बदमाश टाइप अफराद मौजूद थे जिनके कंधों से मशीन गने लटकी हुई दिखाई दे रही थी। वो शायद वहाँ मुहाफिजों के तौर पर मौजूद थे। इमरान ने मुहाफिजों को टाइगर को देखकर चौंकते देखा था जैसे वो उसे पहचानते हों। इमरान समझ गया था कि टाइगर यहाँ पहले भी आता रहता होगा, यही वजह थी कि मुहाफिज उसे देखकर चौंके थे। और उनके चेहरों पर टाइगर के लिए वाजे तौर पर नफरत की झलक दिखाई दी थी, जैसे वो टाइगर को नापसंद करते हों। टाइगर उन सब की परवाह किए बगैर और रुके बगैर काउंटर की तरफ बढ़ गया। काउंटर से गुजरकर वो साइड दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सामने एक मशीन गन बर्दाद बदमाश खड़ा था। टाइगर को इस तरफ आते देखकर वो मुस्तैद हो गया। उसने कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतार कर हाथ में पकड़ ली। रुको, कहाँ जा रहे हो? बदमाश ने टाइगर की तरफ देखते हुए इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहा। आर्मी से मिलना है, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। बॉस इस वक्त मसरूफ है, उसने किसी को भी अंदर आने से मना किया है, बदमाश ने उसी अंदाज में कहा। उसने किसी के लिए मना किया होगा, जयगर दादा को नहीं। हटो रास्ते से और मुझे अंदर जाने दो, टाइगर ने गुर्रा कर कहा। तो बदमाश ने मशीन गन उठाकर टाइगर के सीने से लगा दी, लेकिन दूसरे लम्हे हॉल एक जोरदार थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा और बदमाश की हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो उछल कर साइड पर गिरता चला गया। उसके हाथों से मशीन गन निकल कर दूर जा गिरी थी। थप्पड़ और बदमाश के चीखने की आवाज से हॉल में बैठे हुए लोग बुरी तरह से चौंक पड़े और मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखने लगे। बदमाश ने गिरते ही उठने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे टाइगर ने इंतहाई फुर्ती से जेब से मशीन पिस्टल निकाला और उसका रुख बदमाश की तरफ कर दिया। इसी तरह पड़े रहो वरना, टाइगर ने गुर्रा कर कहा। तो बदमाश वहीं साकित हो गया। टाइगर के हाथ में मशीन पिस्टल देखकर हॉल में मौजूद दूसरे मशीन गन बर्दार जो तेजी से उस तरफ बढ़ रहे थे वो भी अपनी जगहों पर साकित हो गए। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जयगर दादा, गिरे हुए बदमाश ने चीखते हुए कहा। अच्छे और बुरे का फैसला आर्मी पर छोड़ दो, टाइगर ने कहा और फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इमरान भी खामोशी से अंदर आ गया। दूसरी तरफ एक छोटी सी राहदारी थी जिसके आखिर में एक कमरे का दरवाजा दिखाई दे रहा था। दरवाजा बंद था। इमरान के अंदर आते ही टाइगर ने दरवाजा बंद किया और इस पर लॉक लगा दिया। अब हमें कोई अंदर आकर डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, टाइगर ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और वो दोनों राहदारी में आगे बढ़ने लगे। उसी लम्हे उनके पीछे दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। उनके अंदर आते ही बदमाश भागते हुए दरवाजे के पास आ गए थे और बंद दरवाजे को देखकर वो इस पर जोर जोर से हाथ मार रहे थे। टाइगर और इमरान लापरवाहाना अंदाज में सामने मौजूद कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गए। टाइगर ने आगे बढ़कर दरवाजे पर लात मारी तो दरवाजा जोरदार धमाके से खुल गया और टाइगर छलांग लगाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। सामने एक जहाजी साइज की मेज पड़ी थी जिसके पीछे ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र गैर मुल्की बैठा हुआ था। गैर मुल्की घटे हुए जिस्म का मालिक था और जिसके उसके सर के बाल आधे से ज्यादा गायब थे। उसके हाथ में फोन का रिसीवर था और वो किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, धमाके से खुला और टाइगर अंदर दाखिल हुआ, अधेड़ उम्र गैर मुल्की बुरी तरह से उछल पड़ा और फिर टाइगर और उसके साथ इमरान पर नजर पड़ते ही उसका रंग जर्द पड़ता चला गया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, उसने रिसीवर में कहा और साथ ही उसने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। जयगर दादा तुम, अधेड़ उम्र गैर मुल्की ने टाइगर की तरफ देख कर आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ क्यों, मुझे देखकर तुम्हारी जान क्यों निकल गई है, टाइगर ने जहरीले लहजे में कहा। ओह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी गैर मुतवक्का आमद से मैं बौखला गया था। ये कौन है, गैर मुल्की अधेड़ उम्र ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। ये मेरा उस्ताद है, टाइगर ने जवाब दिया। उस्ताद? क्या मतलब, तुम्हारा कोई उस्ताद भी है? तुमने पहले तो इसका कभी जिक्र नहीं किया, गैर मुल्की अधेड़ उम्र ने हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन इमरान उसकी आंखों में टाइगर का खौफ साफ देख रहा था। पहले कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है, टाइगर ने इसी तरह से गुर्राते हुए लहजे में कहा। तो अधेड़ उम्र गैर मुल्की खुश्क होते हुए होंठों पर जबान फेरता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इमरान कमरे का जायजा ले रहा था। बॉस बैठे, मेरी मौजूदगी में यह आपको हर बात का सही सही और सच सच जवाब देगा और अगर इसने झूठ बोला या कोई बात छुपाने की कोशिश की तो मैं इसकी बोटियां उड़ा दूंगा, टाइगर ने कहा। क्या क्या मतलब, टाइगर की बात सुनकर अधेड़ उम्र गैर मुल्की ने गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा। उसी लम्हे उसके सामने पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। इससे पहले कि अधेड़ उमर गैर मुल्की फोन का रिसीवर उठाता, टाइगर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जयगर दादा बोल रहा हूँ, मैं और आर में अहम मीटिंग में मसरूफ हैं, बाद में फोन करना, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा और एक झटके से रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। ये सब क्या हो रहा है जयगर दादा, आर्मी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसके लहजे में शदीद बेचैनी और परेशानी नुमाया थी। तुम बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो, मैं इससे बात करूंगा, और अगर कोई इस तरफ आए तो उसे गोली से उड़ा देना, इमरान ने गुदाहट भरे लहजे में कहा। यस बॉस, टाइगर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जयगर दादा को इस तरह अपने उस्ताद के सामने मुअद्दबाना लहजे में बात करते और उसका हुक्म मानते देखकर आर्मी के चेहरे पर मौजूद बौखलाहट और खौफ के तासुरात मजीद नुमाया हो गए। टाइगर ने बाहर जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। क्या क्या चाहते हो तुम, दरवाजा बंद होते देखकर आर्मी ने इमरान की जानिब खौफ भरी नजरों से देखते हुए कहा। इमरान मेज की साइड से होता हुआ उसके करीब आया और मेज के कॉर्नर पर बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठ गया। साथ ही उसने जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया और इत्मीनान भरे अंदाज में इसका मैगजीन घुमाने लगा। उसे अपने करीब और उसके हाथ में साइलेंसर लगे रिवॉल्वर को देखकर आर्मी ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। तुम्हारे दो साथी विकी और जैकी कहाँ हैं, इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। कौन विकी और जैकी, आर्मी ने चौंक कर कहा। कितने विकी और जैकी हैं तुम्हारे ग्रुप में जो इनके नाम सुनकर हैरान हो रहे हो, इमरान ने कहा। क्यों पूछ रहे हो उनके बारे में, आर्मी ने खौफ से हकलाहट भरे लहजे में कहा। उन्होंने मेरे शेरों का शिकार किया है, इमरान ने कहा। शेरों का शिकार क्या मतलब, आर्मी ने चौंक कर कहा। वाइटल प्लाजा के टॉप फ्लोर में मौजूद एक फ्लैट से वो चार अफराद को उठा कर ले गए हैं जिनमें तीन मर्द और एक औरत है। जब वो उन्हें लेकर निकल रहे थे तो मेरे तीन आदमी उनके पीछे लपके थे, लेकिन उसी लम्हे विकी और जैकी ने उन पर फायरिंग खोल दी जिससे मेरे तीनों साथी शदीद जख्मी हो गए हैं। वो तीनों अब अस्पताल में हैं, तीन शदीद जख्मी हैं और चार को तुम्हारे आदमी बेहोशी की हालत में उठा कर ले गए हैं, इसलिए तुम समझ सकते हो कि मैं इन दोनों के बारे में तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, इमरान ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। ओह, तो वो तुम्हारे साथी थे, इमरान ने कहा। हाँ, वो मेरे साथी हैं। अब तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है आर्मी, मैं अपने दुश्मन को तो माफ कर सकता हूँ लेकिन कोई मेरे साथियों को नुकसान पहुँचाए ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ये सब चूंकि तुम्हारे कहने पर हुआ है इसलिए मेरी नजर में तुम मुजरिम हो। अब अगर तुम मेरे हाथों अजियतनाक मौत मरने से बचना चाहते हो तो बता दो कि विकी और जैकी कहाँ हैं और मेरे चार साथियों को कहाँ ले जाया गया है, इमरान ने इंतहाई करख्त और सख्त लहजे में कहा। तुम हो कौन, आर्मी ने इसका करख्त और सख्त लहजा सुनकर खौफ भरे लहजे में कहा। कोबरा, इमरान ने कहा तो आर्मी बेख्तियार उछल पड़ा और उसका रंग यकलक सफेद पड़ गया। कोबरा, तुम कोबरा हो, उसने बुरी तरह लरजते हुए कहा। हाँ, जयगर दादा का उस्ताद कोबरा, और कोबरा में ही इतनी जरूरत है कि इस कदर सिक्योरिटी के बावजूद तुम्हारे सर पर तुम्हारी मौत बनकर पहुंच जाए, इमरान ने कहा। ओह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कोबरा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि उसने जिन अफराद को उठाने का कहा था वो तुम्हारे आदमी हैं। अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारे आदमी हैं, तो मैं इसका काम करने से इनकार कर देता। मैंने अनजाने में ये सब किया है, आर्मी ने इसी तरह खौफ भरे लहजे में कहा। तो क्या तुमने ये काम लेडी घोस्ट के कहने पर कराया है, इमरान ने हुनकारा भरते हुए कहा। लेडी घोस्ट, कौन लेडी घोस्ट, मैं किसी लेडी घोस्ट को नहीं जानता, मुझे तो उसने अपना नाम मादाम फारिहा बताया था, मैं इसका नाम नहीं लेता और उसे मादाम ही कहता हूँ, आर्मी ने जवाब दिया। क्या वो इसी फ्लैट में रहती है जहाँ से तुम्हारे आदमियों ने मेरे साथियों को उठाया है, इमरान ने पूछा। ये मैं नहीं जानता वो कौन है और कहाँ रहती है, उसने अपने बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया था, वो मुझसे सिर्फ फोन पर ही बात करती थी और छोटे मोटे काम के अवज वो मेरी तवक्को से ज्यादा मुआवजा देती थी, इसीलिए मैं इसका हर काम आंख बंद करके कर देता था, आर्मी ने कहा। इसका रابطہ नंबर है तुम्हारे पास, इमरान ने पूछा। हाँ, एक स्पेशल नंबर है दिया है उसने मुझे, इंतहाई जरूरत पड़ने पर मैं इस नंबर पर उसे कॉल कर सकता हूँ। आर्मे ने कहा, नंबर बताओ। इमरान ने कहा तो आर्मे ने उसे एक नंबर बता दिया। गुड शो, अब ये बताओ कि वो तुमसे किस नौयत के काम लेती है? मुझे हर बात सच सुननी है, मुझे सच और झूठ की तमीज करना आती है। अगर तुमने मुझसे गलत बयानी की या तुम्हारी बातों में मुझे झूठ महसूस हुआ तो मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे सर में गोली उतार दूंगा। इमरान ने कहा, ओह नहीं नहीं, ऐसा मत करना कोबरा, मैं तुम्हें सारी बातें बता देता हूँ, आर्मे ने खौफ से कांप कर कहा। और फिर वो इमरान को बताने लगा कि इमरान उससे क्या क्या काम के मादाम उससे क्या क्या काम लेती थी। मादाम का काम ज्यादातर मुख्तलिफ अफराद की निगरानी का होता था जो वो आर्मे और उसके आदमियों से कराती थी। ये सुनकर इमरान ने बेख्तियार होंठ बीच लिए कि आर्मे ने इस लड़की को प्रोफेसर काशिफ जलील के बारे में बता दिया था कि उसे बेहोशी की हालत में किस अस्पताल में पहुंचाया गया है। प्रोफेसर काशिफ जलील का नाम सामने आते ही इमरान का यकीन पुख्ता हो गया कि मादाम फारेहा लेडी घोष का फर्जी नाम है। ठीक है, अब बताओ तुम्हारे आदमी मेरे साथियों को कहाँ ले गए हैं? इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। जीरो पॉइंट पर, मादाम के हुक्म पर मैंने उन्हें जीरो पॉइंट पर भेज दिया है, आर्मे ने जवाब दिया। किसका है जीरो पॉइंट और कहाँ है? इमरान ने कहा। ये मेरा एक खुफिया पॉइंट है, आर्मे ने जवाब दिया और फिर उसने जीरो पॉइंट का पता बता दिया। क्या वो सब जिंदा है? इमरान ने पूछा। हाँ, मादाम ने उन्हें फ्लैश लाइट से बेहोश किया हुआ है, जब तक उन्हें एंटी नहीं लगाया जाता उस वक्त तक वो होश में नहीं आएंगी। मादाम ने कहा कि जब तक वो खुद नहीं आ जाती उन्हें बेहोशी रखा जाए, आर्मे ने कहा। जीरो पॉइंट का इंचार्ज कौन है? इमरान ने पूछा। वॉस्टर, उसका नाम वॉस्टर है, आर्मे ने जवाब दिया। मेरे सामने उसे फोन करो और तस्दीक कराओ कि मेरे आदमी वहीं मौजूद हैं और उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया है, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान ने आर्मे ने कहना चाहा, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है आर्मे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम अभी तक जिंदा हो, वरना कोबरा के सामने हकलाने वाला और झूठ बोलने वाला जिंदा नहीं रहता। जो कह रहा हूँ वो करो वरना, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा तो आर्मे उसका सर्द लहजा सुनकर कांप कर रह गया। उसने फौरन सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउडर ऑन करो, इमरान ने कहा तो आर्मे ने फौरन उसका लाउडर ऑन कर दिया। यस, जीरो पॉइंट। रब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। आर्मे बोल रहा हूँ, आर्मे ने लहजे में करख्त गिलाते हुए कहा। ओह यस बॉस, वॉस्टर बोल रहा हूँ, आर्मे की आवाज सुनकर दूसरी तरफ से इंतहाई मोतबाना लहजे में कहा गया। तुम्हारे पास चार अफराद को बेहोशी की हालत में लाया गया था जिनमें तीन मर्द और एक औरत है, आर्मे ने कहा। यस बॉस, विकी और जैकी उन्हें यहाँ पहुँचा कर गए हैं, वॉस्टर ने कहा। कहाँ है वो और किस हालत में है? आर्मे ने उसी अंदाज में पूछा। मैंने उन्हें ब्लैक रूम में रॉड्स वाली कुर्सियों पर जकड़ दिया है और वो अभी तक बेहोश ही पड़े हुए हैं, वॉस्टर ने जवाब दिया। और इससे पहले कि आर्मे कुछ कहता, इमरान ने उसके हाथ से रिसीवर झपट लिया और दूसरे हाथ में मौजूद रिवॉल्वर उसके सर से लगा दिया और उसे इशारे से खामोश रहने का कहा। तुम्हारे पास DD-1 NT है? इमरान ने आर्मे की आवाज में पूछा और उसे अपने आवाज में बोलता देखकर आर्मे हैरान होकर रह गया। यस बॉस, मौजूद है, वॉस्टर ने जवाब दिया। गुड शो, उन्हें एक एक एंटी लगाकर होश में लाओ और रॉड्स वाली कुर्सियों से आजाद कर दो और उन्हें जीरो पॉइंट से निकलने का मौका दे दो, वो जहाँ जाना चाहे उन्हें जाने दो, इमरान ने कहा। लेकिन बॉस, वॉस्टर ने कहा, जो कह रहा हूँ वो करो, नॉनसेंस, ये वो अफराद नहीं है जिन्हें लाया जाना था, इन्हें नुकसान पहुँचाए बगैर निकलने का मौका दो, ये मेरा हुक्म है, इमरान ने आर्मे की आवाज में गरजते हुए कहा। यस बॉस, वॉस्टर ने खौफ भरे लहजे में कहा और इमरान ने एक झटके से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। ये कैसे मुमकिन है, तुम मेरी आवाज में कैसे बात कर सकते हो, आर्मे ने इमरान की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। ये सब छोड़ो और अपनी मादाम फारिया का नंबर मिलाओ, इमरान ने कहा। आर्मे चंद लम्हे उसे खौफ और परेशानी के आलम में देखता रहा, फिर उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और कान से लगाकर नंबर प्रेस करने लगा। जैसे ही उसने नंबर प्रेस करके हाथ हटाया, इमरान ने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ नंबर बंद था। ये नंबर तो ऑफ है, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन मैं इसी नंबर पर बात करता हूँ, पहले तो ये नंबर कभी ऑफ नहीं हुआ। आर्मी ने परेशानी के आलम में कहा। तो अब क्यों ऑफ है, इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानता, आर्मी ने इसी अंदाज में कहा। वो कौन सा नंबर है तुम्हारे पास इससे राब्ते के लिए, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। नहीं, मेरे पास यही एक नंबर है और कोई नहीं, आर्मी ने जवाब दिया। ठीक है, तुमने चूंकि मुझसे ताबून किया है इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन विकी और जैकी को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। इन दोनों ने मेरे तीन साथियों को शदीद जख्मी किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें खुद हलाक करो। अगर अगले एक घंटे तक मुझे इन दोनों की हलाकत की इत्तला ना मिली तो फिर मैं यहाँ दोबारा आऊंगा और आते ही तुम्हें गोली मार दूंगा, इमरान ने गुर्राकर कहा। ओह नहीं, मैं अभी इन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ और तुम्हारे सामने उन्हें शूट कर देता हूँ, इमरान ने कहा। आर्मी ने कहा, नहीं, मैं इतनी देर यहाँ नहीं रुक सकता। तुम बाहर काउंटर पर कॉल करो और अपने आदमियों से कहो कि वो हमारे रास्ते में आने की कोशिश ना करें, वरना ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा ये क्लब। जयकर दादा के पास मैग्नेट बम है, अब तक वो बाहर कई जगहों पर बम लगा चुका होगा। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस होने की देर है, फिर तुम और तुम्हारा ये क्लब राख का ढेर बन जाएगा। अगर तुम्हारे साथियों ने हमें रोकने की कोशिश ना की तो मैं और जयकर बाहर जाते ही तुम्हें फोन करके बता देंगे कि मैग्नेट बम कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तुम उन्हें हटा लेना। काउंटर पर ये भी बता देना कि तुम मसरूफ हो इसलिए कोई यहाँ ना आए और ना तुम्हें कॉल करे, इमरान ने कहा। और बमों का सुनकर आर्मी का रंग एक बार फिर मुतगैर हो गया। ठीक है, तुम्हें और जयकर दादा को यहाँ से बाहर जाने में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी, आर्मी ने खौफ भरे लहजे में कहा और उसने रिसीवर उठाया और काउंटर पर फोन करके हिदायत देने लगा। जैसे ही उसने हिदायत देकर रिसीवर क्रेडल पर रखा, इमरान का हाथ हरकत में आया और आर्मी बुरी तरह से चीखता हुआ कुर्सी पर गिर गया। इमरान ने उसके सर पर रिवॉल्वर का दस्ता मारा था। दूसरी जरब लगते ही आर्मी ढेर हो गया और उसके हाथ पाँव ढीले पड़ते चले गए। आर्मी को बेहोश करके इमरान उठा और तेज तेज चलता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो बाहर टाइगर चौकस खड़ा था। कोई आया तो नहीं इस तरफ, इमरान ने पूछा। नहीं, लेकिन ये सब बैरूनी दरवाजे के पास खड़े हैं, टाइगर ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएंगे, आओ, इमरान ने कहा और तेज तेज चलता हुआ राहदारी की तरफ चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने लॉक हटाया और फिर दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गया। ये देखकर टाइगर एक तवील सांस लेकर रह गया कि मशीन गन बरदार दरवाजे के पास मौजूद नहीं थे, बल्कि वो वापस उन्हीं जगहों पर जाकर खड़े हो गए थे जहां वो पहले खड़े थे। अलबत्ता जिस बदमाश को टाइगर ने थप्पड़ मारा था वो दरवाजे की साइड में खड़ा था। इन दोनों को बाहर निकलते देखकर वो खौफनाक नजरों से उन्हें घूरने लगा। आओ, इमरान ने कहा और टाइगर के साथ इत्मीनान भरे अंदाज में बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। हॉल में मौजूद अफराद और गुंडे उन्हें तेज नजरों से घूर रहे थे, लेकिन चूंकि आर्मी ने काउंटर पर उन्हें वहां से निकलने के अहकाम दिए थे इसलिए उसमें से ना तो कोई आगे आया था और ना ही किसी ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। सीटी की आवाज सुनकर कर्नल स्कॉट ने सामने पड़ा हुआ ट्रांसमीटर उठा लिया। उसने ट्रांसमीटर का बटन प्रेस किया तो उसे दूसरी तरफ से एकॉय की कॉल मौसूल होने लगी, जो कब्रस के दारुल हुकूमत निकोसिया में बतौर फॉरेन एजेंट तैनात था। यस कर्नल स्कॉट अटेंडिंग यू, ओवर, कर्नल स्कॉट ने करप्ट लहजे में कहा। एकॉय बोल रहा हूँ चीफ, ओवर, दूसरी तरफ से एकॉय की आवाज सुनाई दी। यस एकॉय, क्या रिपोर्ट है, ओवर, कर्नल स्कॉट ने पूछा। काम हो गया है चीफ, मैंने इन दोनों हफ्शियों को हिट कर दिया है, ओवर, एकॉय ने मुस्तरद भरे लहजे में कहा तो एक कर्नल स्कॉट के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। गुड शो, कैसे किया है उन्हें टारगेट, मुझे पूरी तफसील बताओ, ओवर, कर्नल स्कॉट ने कहा। तैयारी की लैंडिंग के बाद वो दोनों तैयारे से निकलकर इमिग्रेशन पर पहुंचे तो मेरा एक आदमी इमिग्रेशन काउंटर पर मौजूद था, उसने मुझे इन दोनों के कद काट के बारे में बता दिया था। कुछ देर बाद मेरे आदमियों ने मुझे उनके एयरपोर्ट से बाहर निकलने की रिपोर्ट दी। एयरपोर्ट के बाहर भी मेरा एक साथी मौजूद था, इसने इन दोनों की निगरानी शुरू कर दी और दोनों टैक्सी स्टैंड पर गए। फिर उन्होंने वहां से एक टैक्सी हायर की। मेरे साथी ने मुझे उस टैक्सी का नंबर बता दिया। मैं एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर एक गैर आबाद इलाके में उनका मुंतजर था। एयरपोर्ट से आने वाली तमाम गाड़ियां उस रास्ते से जरूर गुजरती थी। मेरे पास PKR 350 दूर मार राइफल थी। जब मैंने मतलूबा टैक्सी राइफल पर लगी दूरबीन से देखी तो मैंने एक फायर करके उस टैक्सी का अगला टायर बर्स्ट कर दिया। टैक्सी चूंकि फुल रफ्तार से आ रही थी इसलिए जैसे ही उसका टायर बर्स्ट हुआ ड्राइवर टैक्सी को कंट्रोल न रख सका और टैक्सी सड़क पर उलट गई और दूर तक उलटती पलटती चली गई और साइड सड़क की साइड पर मौजूद गन्ने की फसल में घुसती चली गई। मैं सड़क के किनारे पर मौजूद एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा हुआ था। टैक्सी को उलट कर खेत में गिर जाते देखकर मैं फौरन दरख्त से नीचे उतरा और फिर मैं भागता हुआ उसी तरफ बढ़ता चला गया जहां गन्ने की फसल में टैक्सी उल्टी हुई थी। इत्तफाक से इस तरफ अभी कोई नहीं आया था। हालांकि इस टैक्सी को इस तरह उलटते पलटते देखकर सड़क पर मौजूद कई गाड़ियां रुक गई थी। जब मैं टैक्सी के नजदीक पहुंचा तो मैंने ड्राइवर और इन दोनों सियाह फामों को इंतहाई जख्मी हालत में देखा। वो टैक्सी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने फौरन जेब से एक साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और इन दोनों के सरों में गोलियां मार दी। जब मुझे यकीन हो गया कि वो दोनों हलाक हो चुके हैं तो मैंने ड्राइवर को भी हलाक किया और वहां से निकल गया। ओवर। एकॉय ने तफसील बताते हुए कहा। पार्ट नंबर 3 यहाँ इख्तिताम पजीर होता है।